ये आकाशवाणी दिल्ली है।
मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री आतिशी ने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत छात्र उद्यमियों से उनके स्टार्टअप के बारे में बातचीत की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी बसों में आग की घटनाओं की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली के 6 विशेषज्ञों की समिति गठित की। हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने लोगों को शुभकामनाएं दी। जनजातीय शिल्प कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए 5 दिवसीय आदि बाजार कल से शुरू हो रहा है और दिल्ली नगर निगम ने दक्षिणी क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम 2024-25 के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर्वोदय विद्यालय के छात्र उद्यमियों से उनके स्टार्टअप के बारे में बातचीत की। छात्रों ने शिक्षा मंत्री के साथ अपने स्टार्टअप और अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों के छात्र रचनात्मक होते हैं और बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम ने उन्हें खुद को पहचानने का मौका दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों ने अपने आसपास की छोटी बड़ी समस्याओं को समझा और अपने स्टार्टअप के रूप में उसका समाधान तैयार किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि छात्रों के स्टार्टअप आने वाले समय में यूनिकॉर्न के रूप में बदलेंगे।
इस प्रोग्राम ने आप सबको एक कॉन्फिडेंस दे दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अपने दम पर कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी मेहनत के दम पे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये शायद सबसे बड़ा प्लस है जो इस प्रोग्राम से निकल के आ रहा है कि अब आप लोग अपना फ्यूचर बनाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और मैं ये भी आपको बात कहूंगी कि मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको तो अपने फ्यूचर में हेल्प करेगा ही, बट ये कॉन्फिडेंस हमारे पूरी सोसाइटी को और हमारे पूरे देश को भी हेल्प करेगा।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी बसों में आग की घटनाओं की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली के 6 विशेषज्ञों की समिति गठित की है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह समिति आग की घटना के मूल कारणों की पहचान करने और दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन बसों के सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझाव देगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा पटाखे जलाए जाने की आलोचना की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की दोहरी नीति से दिल्ली के लोग हैरान हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने वाले नेताओं ने लाखों रूपये के पटाखे जलाये। श्री सचदेवा ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध की वजह से पार्टी के कार्यकर्ता इतने अधिक पटाखे नहीं ला सकते, ऐसे में पार्टी ने ही उन्हें पटाखे उपलब्ध कराए होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पटाखे जलाए जाने का स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई एफआईआर का स्वागत करती है। पार्टी श्री केजरीवाल और दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी लेने की अपील करती है।
आम आदमी पार्टी के नेता बार बार जब भी दीपावली या हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं इस तरह की घोषणाएं करते हैं। कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और जिस तरह के पटाखे छोड़े गए हैं ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उन्हें खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए। वो एक दिन पहले बयानबाजी कर रहे हैं कि फरवरी 2025 तक सारे पटाखों को जाने और उनके नाक के नीचे उनके मुख्यमंत्री के सामने पटाखे जलाए जा रहे थे, रोक लेते। लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर दीपावली पे पटाखों की बैन की घोषणा करना और कल जिस तरह से उस बैन का मजाक बनाया गया ये संदेश शर्मनाक।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को सत्य की जीत बताया। उन्होंने आज केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि श्री केजरीवाल के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ और इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लगाए गए आरोप असत्य हैं। श्री सिंह ने कहा कि श्री केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है और अन्य मंत्री अपने विभागों का कार्य करते हैं। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह द्वारा अरविंद केजरीवाल पर दिए गए बयानों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की राजनीतिक और प्रशासनिक समझ संदेहजनक है, जिसे उन्हें अपने दिए बयानों से प्रमाणित कर दिया है। श्री सचदेवा ने कहा कि देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसके पास कोई विभाग न हो, और अगर श्री केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है तो इसका मकसद यह है कि दिल्ली सरकार के प्रत्येक विभाग में जो भी घोटाला है उसका जिम्मेदार किसी अन्य को बनाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी दिल्ली है। हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। एक रिपोर्ट।
निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न हिए के सूल। हिंदी भाषा साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली यानी हिंदी की आम भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन बातों को कहा था। आज हिंदी दिवस के अवसर पर इनकी कृतियों को याद करना हमें हिंदी के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता पर बल देता है। आज समय के साथ हिंदी मजबूत होती जा रही है, यही कारण है कि अब सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी अपनी भाषा की अपेक्षा हिंदी को अधिक महत्व देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। समाचार कक्ष से अमन यादव।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अन्य भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले।
मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। उसके सोचने का, तर्क का, विश्लेषण का और निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो इसको एक संपूर्ण बच्चा बनाता है, वो भी अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में एक वीडियो साझा किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि राजभाषा विभाग शीघ्र हिंदी से 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ करेगा। इससे पत्रों और भाषणों का बहुत कम समय में अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी भाषाओं में हो पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी को देश और विदेश में राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के महत्व पर वीडियो साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को जुबान देती हिंदी भारत की सभी राजभाषाओं की सहोदरी है। श्री सक्सेना ने आग्रह किया कि जनता को सिर्फ हिंदी दिवस के दिन ही नहीं बल्कि प्रतिदिन हिंदी भाषा को समृद्ध और सशक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने यात्रियों की संख्या में बड़ी वृद्धि को देखते हुए सभी मेट्रो लाइनों पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की शुरुआत की है। डीएमआरसी ने बताया कि इससे मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और मेट्रो में होने वाली भीड़ को कम किया जा सकेगा। डीएमआरसी के अनुसार 20 अगस्त को 77 लाख से अधिक यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं इस महीने की 9 तारीख से 12 तारीख तक मेट्रो में 73 से 77 लाख यात्रियों ने मेट्रो का उपयोग किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। जनजातीय शिल्प, कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड का 5 दिवसीय आदि बाजार कल से शुरू हो रहा है। इस प्रदर्शनी का आयोजन मंडी हाउस के आगाखां हॉल में हो रहा है। यह प्रदर्शनी गुरुवार को संपन्न होगी। आदि बाजार में हस्तनिर्मित आभूषण से लेकर जैविक उत्पाद, जनजातीय उत्पाद और जनजातीय शिल्पकला उपलब्ध है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने दक्षिण क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। एमसीडी ने आज बताया कि यह कार्रवाई विक्रेताओं और कब्जाधारियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के संज्ञान में की गई। अभियान के तहत आईआईटी गेट से राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तक पूरे क्षेत्र में फुटपाथों और सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। वहीं एमसीडी द्वारा आने वाले सप्ताह में इस तरह के अस्थायी अतिक्रमण हटाने के अभियान को तेज किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने विदेशी नागरिकों को संपत्ति किराए पर देने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने निर्देशों में कहा कि संपत्ति मालिकों को विदेशी नागरिकों को रहने के लिए संपत्ति किराए पर देने और उनके प्रवास की सूचना आवश्यक रूप से विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO पर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए विदेशी किराएदारों के आवश्यक विवरण आधारित एक अतिथि रजिस्टर बनाने के लिए भी कहा गया है, जिसमें विदेशी नागरिक से संबंधित विवरण दर्ज किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार संपत्ति मालिक विदेशी नागरिकों की जानकारी अपने स्थानीय पुलिस थाने में जमा कर उसकी पृष्ठभूमि का सत्यापन कराएं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नई तृतीय श्रेणी की टेस्ला एमआरआई मशीन लगाई गई है, जिससे मरीजों को अधिक सटीक रिपोर्ट मिल पाएगी। नवीनतम डायग्नोस्टिक तकनीक पर आधारित एमआरआई मशीन में बेहतर इमेजिंग क्षमताएं हैं और यह विभिन्न प्रकार की स्थितियों के निदान में बेहतर सटीकता प्रदान करती है। अस्पताल में रेडियो डायग्नोसिस विभाग की एचओडी डॉ अमिता मलिक ने कहा कि इस उन्नत एमआरआई मशीन से हमारे मरीजों को उच्चतम गुणवत्ता वाली रिपोर्ट मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर इमेजिंग तकनीक से सटीक निदान प्राप्त होंगे, जिससे अधिक प्रभावी उपचार योजनाएं बन सकेंगी और रोगी के परिणामों में सुधार होगा। राजनीतिक दलों के कई नेता आज दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्री येचुरी का बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए दिल्ली के पार्टी मुख्यालय के एके गोपालन भवन में रखा गया है। केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% करने का निर्णय लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह निर्णय किसानों और प्याज से संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्याज उत्पादक किसान अपने प्याजों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे, इससे प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया के एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि निर्यात शुल्क में कटौती का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना है। श्री शाह ने कहा कि शुल्क की इस कटौती से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और प्याज उत्पादक किसानों की आय भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्याज का निर्यात शुल्क कम करने से और खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाने से सरकार के निर्णयों से किसानों को लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात पर न्यूनतम मूल्य पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। मौजूदा व्यापार चिंताओं और चावल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। चावल की बढ़ती कीमतों और घरेलू बाजार में आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगस्त 2023 में एक अस्थायी उपाय के तौर पर इसे किया गया था। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर के सभी एफसीआई कार्यालयों सहित 760 स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश हुई और मौसम सुहावना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री आतिशी ने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत छात्र उद्यमियों से उनके स्टार्टअप के बारे में बातचीत की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी बसों में आग की घटनाओं की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली के 6 विशेषज्ञों की समिति गठित की। हिन्दी दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने लोगों को शुभकामनाएं दी। जनजातीय शिल्प कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए 5 दिवसीय आदि बाजार कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली नगर निगम ने दक्षिण क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।